حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب ہیں، حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا تذکرہ مجلسوں میں بھی آتا ہے، ہماری مجلسوں میں، حضرت مفتی تقی صاحب اور حضرت مفتی رفیع صاحب مد ظلہم العالی، ان کے دادا ہیں یہ، اور انہوں نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا اور پڑھا بھی، اور پھر دارالعلوم دیوبند میں پڑھایا بھی. غالباً پتہ نہیں اگر یہ صحیح سب یاد ہے یا نہیں، غالباً ایسا ہے کہ غالباً ایسا ہے کہ ان کی پیدائش اور دارالعلوم دیوبند کی ابتدا ایک ہی وقت میں ہوئی، یعنی یہ مشہور تھا ان کے زمانے میں کہ ان دونوں کی عمر سیم ہے، مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہی لے گئے تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، سب سے پہلی دفعہ یہ لے کر گئے تھے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے تھا، بیعت کا پہلا، جب مالٹا کی جیل میں حضرت وقت گزار رہے تھے تو اپنی اصلاح کی فکر دامن گیر ہوئی کہ اپنے شیخ سے رابطہ مشکل ہے، تو پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے. اور اس کی اگر کارگزاری کسی کو شوق ہو رہا ہو پڑھنے کا، تو مجالس حکیم الامت ایک کتاب ہے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں بہت اچھے اچھے ملفوظات ہیں، تو مجالس حکیم الامت کا جو فورورڈ ہے اس میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا. عثمانی جو کہتے مفتی تقی عثمانی اور مفتی رفیع عثمانی، اس لیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تعلق ہے ان کا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فاروقی تھے، باپ کی طرف سے فاروقی تھے اور ماں کی طرف سے علوی تھے، سمجھے؟ تو ان کا بھی عجیب قصہ ہے کہ ان کی والدہ کو بچہ نہیں ہوتا تھا، ہوتا تھا تو بچپن میں انتقال ہو جاتا تھا، حمل گر جاتا تھا، تو ایک مجذوب آئے ان کے یہاں اور وہ صحیح اللہ والے مجذوب تھے، تو ایسے گزر رہے ہوں گے تو کہا بھی دعا کیجئے گے اولاد ہو، تو کہا کہ فاروق اور علی کی کھینچ تان میں بچے زندہ نہیں رہتے، فاروق اور علی کی کھینچ تان میں بچے زندہ نہیں رہتے، تو لوگ سمجھے نہیں کہ کیا مطلب ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے فرمایا کہ یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے شوہر فاروق ہیں اور ہم علوی ہیں، فاروقی اور علوی اس میں، تو کہا کہ ہاں یہ لڑکی بڑی سمجھدار ہے، وہ مجذوب نے کہا جب سنا، کہا کہ آئندہ جب بچہ پیدا ہو تو علی کے حوالے کر دو. تو کہا کہ کیا مطلب اس کا، تو کہا کہ ایک کا نام اشرف علی رکھو، دوسرے کا نام اکبر علی رکھو، تو بشارت دی تھی دو بچوں کے ہونے کی. اور کہا کہ یہ پہلا جو ہے یہ میرا ہے اور دوسرا جو ہے وہ دنیا دار ہوگا. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو بہت بڑے بزرگ بنے، اور وہ اکبر علی جو ہے وہ پڑھ لکھ کر کے انہوں نے ڈپیوٹی کلیکٹری کی غالباً. تو آپ فاروقی النسب ہیں. ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہیں واعظ کے لیے تشریف لے گئے تو کسی نے چٹھی بھیجی حضرت کے اوپر، بدعات کا زمانہ تھا، तो कहा कि हमने सुना है कि आप काफिर हैं, हमने ये भी सुना है कि आप झूलाहे हैं। ये मुख्तलिफ पेशे के लोग होते हैं जिसकी वजह से कहते हैं कि भाई ये कम दर्जे के हैं, ये ऊपर के दर्जे के, ये तेल बनाते हैं तो कम दर्जे के, ये बाल काटते हैं कम दर्जे के, ये सब खुराफात दुनिया के होते हैं ना। ये पंजाब के फुला खानदान के हैं, ये निचले लोग समझे जाते हैं, ये गुजरात के फुला खानदान से ये निचले लोग समझे जाते हैं। तो कहा कि झूला। और तीसरी बात यह है कि बात अगर करनी ही है तो समझ के करना। तो हजरत जब बैठे मिंबर पर तो हजरत ने फरमाया कि भाई मुझे ये कहा गया है तो सबसे पहली बात तो यह है कि मैं कलीमा पढ़ लेता हूं, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह। तो अगर मैं पहले ही से मुसलमान हूं तो ये उसकी वजाहत हो गई, और अगर पहले काफिर था तो अब मुसलमान हो गया। तो कहते अब ये इश्काल नहीं होना चाहिए कि काफिर क्यों तकरीर कर रहा है। नंबर दो, झूला होना कोई ऐब की बात नहीं। देखो ये सीधा नहीं चलेगा कि मैं झूला नहीं हूं, वरना तो तहकीर हो जाती। कहा झूला होना कोई ऐब की बात नहीं है, तो मैं अगर झूला भी हूं तो क्या हर्ज किया है इसमें। रही हकीकत की बात, तो मैं फारूकी उन नसब हूं और मेरे वालिदैन के निकाह के गवाह अब भी मौजूद हैं जिन्हें पता है कि हमारा सिलसिला नसब क्या है। ये दूसरी बात भी खत्म हो गई। और कहा कि तीसरी बात सोच समझ के बात करना। तो भाई देखो, तकरीर करने के लिए बैठता हूं तो हक बात करने के लिए बैठता हूं, पर तबीयत हमारी ऐसी नहीं है कि किसी जगह पर जाकर किसी की छेड़खानी करें। मगर तकरीर के दौरान ऐसी कोई बात आ जाती है जहन में जिससे किसी को तकलीफ हो सकती है, मगर बात हक की होती है तो फिर परवाह भी नहीं करते। तो किसी के रद्द का कसद लेकर नहीं आए हैं कि किसी के खिलाफ तकरीर करेंगे, मगर तकरीर के दौरान अगर बिदात का तज़किरा आ गया तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं। तो फिर थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि भाई तकरीर शुरू हुई और बिदात पर ऐसा रद्द हुआ कि पहले कभी नहीं हुआ था। तो बात ही सारी याद। तो हजरत की मुलम्मत थे भाई, हमारे सभी अकाबिर जो हैं जिसका तज़किरा शुरू कर दो तो ऐसा लगता है कि इस जैसा था ही नहीं कोई। एक मरतबा एक जगह पर तशरीफ ले गए तो किसी ने चिट्ठी भेजी कि यहां दो किस्म के लोग हैं और एक दूसरे किस्म के लोग हैं, सीरतुल नबी का जलसे के लिए आपको बुलाया है, तो दूसरा जो गिरोह है उन्होंने आपको बदनाम करने के लिए प्लान ये सोचा है कि जैसे ही आपकी तकरीर खत्म होगी तो ऐसा मुख्तलिफ गोशों से ऐलान होगा कि वे खड़े हो जाओ और अदब से सलाम पढ़ो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अगर आप खड़े हो गए तो इनकी तायद हो जाएगी, और अगर आप बैठे रहे तो गुस्ताख गुस्ताख की बात होकर के जलसे में अफरा तफरी हो जाएगी। तो आप जरा ख्याल रखिए, किसी ने चिट्ठी भेजी हजरत के चाहने वालों में से, उसको पता उस वक्त चला होगा जब हजरत स्टेज पे बैठ गए। हजरत ने चिट्ठी पढ़ ली और बैठे रहे। जब हजरत की तकरीर की बारी आई तो हजरत अपनी जगह से उठे और उठ करके कहा कि भाई ये कुर्सी जो है वो हटवा लीजिए। आज हम सीरतुल नबी पे तकरीर करने वाले हैं और दिल में एक गलबा है कि आज खड़े होकर के हम सीरतुल नबी को बयान करें। जरूरी नहीं है, अदब है तो अदब का गलबा है आज कि हम खड़े होकर ही तकरीर करें। और इसका इस कदर गलबा है इस वक्त कि हमारा दिल ये चाह रहा है कि सुनने वाले भी खड़े होकर सुने। खड़े हो गए सर, खड़े हो गए सर। अब ढाई तीन घंटे की तो तकरीर होती थी हजरत की। हजरत ने खुद ये वाकया बयान फरमाया, तो हजरत ने फरमाया कि ढाई तीन घंटे तक हमारी तकरीर हुई, तो शर पसंद लोगों का शर तो खत्म हो चुका था उस वक्त तक, उनमें से कई तो जा चुके थे और जो थे वो अंदर अंदर इंतजार में थे कि कब तकरीर खत्म होगी, हम बैठ करके आराम करें। तो जिन बैठे हुओं को खड़े होने का शौक था, उनका शौक अब उल्टा हो गया, खड़े थे और बैठने का शौक हो रहा था। सही है, बहुत अच्छे लोग थे भाई। उलाई का आबाई फजी नहीं भी मिसली, ये मेरे बाप दादा हैं, ऐसे ला करके तो दिखाओ जो मुकाबला कर सके इनका। ये समझे, वो इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि मन अरादा अन यस्तन फलयस्तन बिमन मात औ कमा काल, कि किसी के नक्शे कदम पर अगर चलना चाहो तो ऐसों के नक्शे कदम पर चलो जो कामयाबी के साथ इंतकाल कर गए हैं। इसलिए इसका मतलब है कि वो आखिर तक सही रहे। फ़इन्नल हय्य ला तुमनु अलैहि अलफितना, इसलिए कि जो जिंदा होता है वो पता नहीं आज क्या कर रहा है और कल क्या करेगा। बहुत से लोग हैं ऐसे कि सेलिब्रिटी, मतलब ये दीनी एतबार से बहुत ऊंचे, मगर फिर कुछ वक्त आता है तो ऐसे बहक जाते हैं कि समझे। बहुत मिसाल है ऐसी। इसलिए ये जो इंतकाल कर गए हैं और सलामती के साथ दुनिया से गए, तो इस पर इत्मीनान होता है कि इनका पाथ सही है। अल्लाह हमें इनसे वाबस्ता रखे और इनके साथ हश्र अदा फरमाए। इनके साथ वाबस्तगी की वजह से दुनिया की मुख्तसर जिंदगी में अगर हमें कोई कदामत परस्त कहता रहे, मगर आखिरत में इनके साथ रहना नसीब हो जाए, तो ये बहुत सस्ता सौदा है। और इनसे कटने की वजह से लोग अगर हमें होशियार समझें, एडवांस समझें, मगर मरने के बाद अगर परेशानी होगी